देव शिव का धनुष टूटने के बाद कोई परशुराम के क्रोध को संभाल नहीं पा रहा था, स्वयं गुरु विश्वामित्र भी नहीं। पूरा जनकपुर घोर चिंता में डूबा हुआ था। देवगण भी उनका भयानक क्रोध देखकर कांप गए थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं लक्ष्मण और परशुराम में युद्ध न हो जाए, और यदि यह युद्ध छिड़ गया तो जो प्रलय होती उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि यदि परशुराम का तपोबल अपराजय था तो लक्ष्मण भी साक्षात शेषनाग के अवतार थे। ये महाराज जनक का राजमहल इस महायुद्ध की भयानक युद्ध भूमि बनने जा रहा था। राजा जनक इस युद्ध की भयानक कल्पना से कांप उठे।
हे महादेव, अब आप ही महर्षि परशुराम को रोक सकते हैं, आप ही हमारी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। धनुष तो आपका ही दिया हुआ था देव आदिदेव, फिर महर्षि परशुराम का क्रोध आपके सिवा और कौन शांत कर सकता है? उन्हें और कौन बता सकता है कि आपके उस धनुष के टूटने से ही ये शुभ घड़ी आ सकी है? कौन बता सकता है उन्हें? बोलिए भगवान, बोलिए, क्या आपको विदेह की कोई चिंता नहीं है? क्या मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद नहीं है?
पिताजी, पिताजी, आप
सीता, तुम यहां मंडप छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई पुत्री?
महर्षि का क्रोध बढ़ता जा रहा है पिताजी, और अब तो अयोध्या कुमार लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए हैं।
क्या, लक्ष्मण भी?
हाँ पिताजी, पता नहीं क्या होने वाला है आज।
भगवान शिव की कृपा से जो भी होगा शुभ ही होगा बेटी, शुभ ही होगा।
कैसे पिताजी, कैसे? महर्षि ने तो अपना परशु भी उठा लिया है।
मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है पुत्री, मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है सीता, किस मंगल उत्सव में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम विवाह मंडप में चलो।
सामने से हट जाइए विश्वामित्र, सामने से हट जाइए।
नहीं महर्षि, नहीं, महादेव का धनुष मुझसे टूटा है, दोषी मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है। जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए।
ये क्या हुआ सीता, श्रीराम क्या कह रहे हैं? यदि परशुराम ने उन पर परशु उठा लिया तो?
नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता।
पर श्रीराम ने स्वयं अपनी भूल स्वीकार की है।
तो वो क्या करते, महर्षि ने छोटे कुमार पर परशु उठा लिया था, अपने छोटे भाई को बचाना उनका कर्तव्य था।
हे महादेव, ऋषि को शांत कीजिए, उनका क्रोध हरिए देव। हे माँ गौरी, कृपा करो, आपने मुझे जो वर दिया है उसकी रक्षा भी आप ही कीजिए।
मेरे शब्दों को सिर्फ शब्द ना समझे रघुनंदन, मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ।
ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है रघुनंदन।
नहीं महर्षि, ये आपके लिए मेरी श्रद्धा है, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं।
ठीक है राम, परीक्षा ही चाहते हो ना, तो परीक्षा ही होगी।
बताइए क्या परीक्षा देनी है मुझे?
यदि सचमुच महादेव का धनुष तुम्हारे छूने भर से टूट गया है तो तुम्हें श्री हरि विष्णु का धनुष तोड़ के दिखाना होगा राम।
यदि आप चाहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु के धनुष को तोड़ूं, तो मैं आपके इस आदेश का पालन करूंगा। लाइए, लाइए वो धनुष।
ये कैसा क्षण है ईश्वर, क्या अब प्रभु को भी परीक्षा देनी होगी, और वो भी स्वयं अपना धनुष तोड़कर। पर यदि परशुराम की ऐसी ही इच्छा है तो क्या प्रभु सचमुच अपना ही धनुष तोड़ देंगे, स्वयं अपने धनुष का अपमान करेंगे? और तब परशुराम ने राम की ओर श्री हरि का धनुष बढ़ाया। पर ये क्या, ये कैसा चमत्कार है प्रभु? वो धनुष तो स्वयं श्री राम के हाथों में चला गया।
आश्चर्य, घोर आश्चर्य, ये धनुष तो दशरथ नंदन राम के हाथों में अपने आप चला गया। पर कैसे, कैसे हुआ ये, कैसे? हे प्रभु, अब मैं समझा, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु ही है। हरि विष्णु, हे श्री राम, श्री राम, आप पर क्रोध करके मुझसे घोर अपराध हुआ, घोर अपराध। हे श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम, आपकी जय हो, जय जय जय। आज मेरी आंखें खुल गई, आपने मेरी आंखों के आगे से अंधेरा हटा दिया। मैं आपका अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए श्री हरि विष्णु, मुझे दंड दीजिए श्री राम।
जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिना गए।
हे कृपा सागर, हे दया निधान, आपकी जय हो। हे राम, आपकी जय हो, जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत कठोर वचन कहे राम, बहुत ही कठोर। दशरथ नंदन राम, अनर्थ हो गया मुझसे। आप श्री हरि विष्णु और आपके अनुज श्री लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। मैं परशुराम आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। हे श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो दशरथ नंदन, आपकी जय हो, आपकी जय हो श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो।
उठिए, उठिए भृगुकुल नंदन, आइए मेरे गले लग जाइए।
दशरथ नंदन श्री राम की, अयोध्या नंदन श्री लक्ष्मण की, परशुराम की, मिथिलापति महाराज जनक की।
नारायण नारायण महादेव, इतने संकट के बाद तो लगता है कि प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न ही हो जाएगा।
देवर्षि, विवाह तो संपन्न होना ही था, किंतु भृगुनंदन परशुराम के कारण थोड़ा विलंब हो गया।
हाँ महादेव, मुझे तो भय था कि कहीं भृगुनंदन परशुराम श्रीराम से युद्ध ना कर बैठे।
सत्य तो ये है देवर्षि, कि परशुराम के मन मस्तिष्क में महादेव का भक्त होने का अहंकार समा गया था, और उनके इस अहंकार को श्री हरि ने अपना परिचय देकर नष्ट किया। और जहाँ तक भक्ति की बात है, तो यदि परशुराम मेरे भक्त हैं, तो श्री हरि भी मेरे आराध्य हैं।
नारायण नारायण, भक्त और आराध्य की ये कैसी अनोखी लीला है प्रभु, मैं तो इस रहस्य को समझ ही नहीं पाया था।
अब तो समझ गए ना देवर्षि?
नहीं प्रभु, अभी कहाँ, ये रहस्य तो समझते समझते ही समझ आएगा।
तो ठीक है, उस समय की प्रतीक्षा कीजिए जब आप सारे रहस्य समझ जाएंगे।
वो तो ठीक है महादेव, पर अभी तो मुझे ये समझाइए कि अब आगे क्या होगा।
भृगुकुल नंदन परशुराम को ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे अब तप के लिए वन में जाएंगे और श्री राम अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे।
अति सुंदर महादेव, ये कैसा सुंदर मोड है श्री हरि की इस लीला का। अब तो मैं भी मिथिला पहुंचूंगा, प्रभु श्री राम और देवी सीता की वैवाहिक जीवन का मैं भी साक्षी होऊंगा। नारायण नारायण।
अवश्य देवर्षि अवश्य, असली लीलाएं तो विवाह के बाद होनी है।
महादेव जानते थे कि ये प्रभु राम की लीलाओं का अंत नहीं आरंभ भर था, अभी तो ऐसी लीला होनी थी जो आज तक न किसी ने देखी न खेली और न सुनी, और ऐसी लीलाएं तो श्री राम ही कर सकते थे।
प्रेम सहित तोड़ी धनु, प्रेम सहित सियावर लीनी, राम दिखा के रूप निज, राम दिखा के रूप निज, ऋषि गर्व चूर कर दीनी।
रामायण।
मैं काल हूं। राम और लक्ष्मण के वास्तविक स्वरूप को जानकर महर्षि परशुराम धन्य हो गए। उनके प्रस्थान के बाद देवताओं ने श्री राम और जानकी पर फूलों की वर्षा की। सारा जनकपुर हर्ष और उल्लास से भर उठा। जानकी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। मिथिलापति जनक तो ऐसे प्रसन्न थे जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया। उन्होंने राम सीता के विधिवत विवाह संपन्न कराने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के पास निमंत्रण पत्र भेजा।
अयोध्या नरेश महाराजा धीराज कौशलपति महाराज दशरथ को मिथिलापति विदेहराज जनक के दूत का प्रणाम स्वीकार हो।
महामंत्री सुमंत सुनाइए, जनकपुरी से क्या संदेश है?
महाराज ये कोई साधारण पत्र नहीं है, ये शुभ समाचार है। मिथिलापति ने आपको सपरिवार आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा है सूर्यवंशी रघुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आपको ये शुभ समाचार देते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपके दोनों अत्यंत पराक्रमी और वीर पुत्र तथा गुरु महर्षि विश्वामित्र के शिष्य श्री राम और लक्ष्मण इस समय हमारे विशेष अतिथि हैं। श्री राम ने हमारे यहाँ महादेव शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जिस धनुष को इस पृथ्वी के बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा भी टस से मस नहीं कर सके। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ हम अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह भी आपके शेष तीनों पुत्रों लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारे इस विनम्र प्रस्ताव को स्वीकार कर हम पर कृपा करें।
अति शुभ, धन्य है गुरु विश्वामित्र, धन्य है जिनकी कृपा से हमारे पुत्र जनकपुरी के अतिथि बने। आर्य सुमंत जनकपुरी के दूत को उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रबंध करें और गुरुदेव वशिष्ठ को बुलावा भेजें।
अवश्य महाराज, मैं गुरु वशिष्ठ को अभी बुलाता हूँ। और हाँ दूत, जनकपुरी लौटने से पहले आप हमारे विशेष अतिथि हैं, ये लीजिए आपका उपहार।
इस पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं आर्य सुमंत, मैंने श्री राम की जन्मदायिनी धरती देख ली, जिनके छूने भर से ही देवी अहिल्या तर गई, जिनके छूने भर से ही महादेव का विशाल धनुष किसी फूल की पंखुड़ी सा टूट गया। बस यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। धन्य है ये अयोध्या की धरती। बस इस धरती की धूली अपने माथे से लगा लूं और फिर महाराज जनक को आपका शुभ संदेश देने के लिए निकलूंगा। जय हो इस पावन धरती की, जय हो प्रजापालक अयोध्या पति की, जय हो श्री राम की, जय हो। जय हो।
बड़े प्रसन्न है राजन, अवश्य ही कोई शुभ संदेश मिला है। इसके पहले हमने आपको इतना प्रसन्न बस पुत्रों के जन्म के समय ही देखा था।
गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम और लक्ष्मण राजा जनक के विशेष अतिथि बने हैं।
विशेष अतिथि? साफ साफ कहिए महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
गुरुदेव, राम ने राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर जीत लिया है। मिथिलापति ने हमें राम और हमारे अन्य कुमारों का अपनी पुत्रियों के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। क्षत्रिय विधान तो पूरा हो चुका है। गुरुदेव, अब हमें लोक रीति के लिए बारात लेकर चलना है।
कुमारों की जय हो। महाराज, राम को उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या और मिथिला का यह संबंध केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए कल्याणकारी होगा। कितना शुभ समाचार है और उतना ही शुभ लग्न भी है महाराज। प्रजा में मोतियों का दान करें और शीघ्र बारात प्रस्थान की तैयारियां आरंभ कराएं।
अवश्य गुरुदेव, हमें तो आपके संकेत की प्रतीक्षा है।
वशिष्ठ की हाँ सुनते ही दशरथ का मन खुशी से नाच उठा। उनसे ये खुशी संभाले नहीं संभलती थी, जैसे वो एक बार फिर से बच्चे हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। और तब उनके मन में कुछ आया और वो ये संदेश महारानी कौशल्या को सुनाने के लिए निकल पड़े। लगभग भागते से वो ये सोचते हुए कि महारानी इस शुभ सूचना से कितनी प्रसन्न होंगी।
सावधान, सूर्य कुलभूषण रघुवंश मणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के महल में पधार रहे हैं।
अरे क्या हुआ, बोलो ना।
महारानी कौशल्या, महाराज आपके पास आ रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न है महारानी, बिल्कुल बच्चे जैसी मुस्कान है उनके मुख पर।
अच्छा, ऐसी कौन सी प्रसन्नता है महाराज को?
मैं क्या जानू महारानी, वो किसी को बताते ही नहीं। कहते हैं सबसे पहले आप ही को बताएंगे।
महारानी कौशल्या, अब ये राजमहल खुशियों से भर जाएगा। इस सुने राजमहल को नया जीवन मिल जाएगा महारानी। महल के कोने कोने में खुशियों की वर्षा होगी।
क्या हमारे पुत्र आने वाले हैं स्वामी? क्या महर्षि विश्वामित्र ने उनके आगमन का संदेश भेजा है?
नहीं कौशल्या, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।
जो भी हो महाराज, पर हम जानते हैं आपकी ये प्रसन्नता पुत्रों से संबंधित है। और किसी सूचना से आप इतने प्रसन्न हो ही नहीं सकते।
बिल्कुल ठीक कहा महारानी, हमारे पुत्रों का विवाह सम्पन्न होने जा रहा है। हमें बारात लेकर शीघ्र प्रस्थान करना है।
क्या कह रहे हैं महाराज, अचानक पुत्रों के विवाह की बातें? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
अब इस राजमहल को नया जीवन मिलेगा कौशल्या। महल का कोना कोना नाच उठेगा।
ऐसा क्या होने वाला है स्वामी? क्या हमारे पुत्र लौटकर वापस आ रहे हैं? क्या महर्षि विश्वामित्र ने कोई सूचना भेजी है?
हमारे पुत्रों का विवाह संपन्न होने जा रहा है महारानी। राम ने राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर जीता है। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उसी मंडप में होगा। हमने सुमित्रा और कैकेयी को भी ये शुभ संदेश भेज दिया है।
ये क्या कह रहे हैं महाराज, अचानक ये सब?
शुभ कार्य ऐसे ही होते हैं महारानी, देख क्या रही हैं? बारात की तैयारियां कीजिए।
नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कहें। यदि यदि आप सिद्धाश्रम लौट जाएंगे तो हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे।
अभी तो बारात भी नहीं आई है गुरुदेव, पिताजी पूछेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि आप क्यों चले गए और हमने आपको क्यों जाने दिया?
हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है लक्ष्मण। जिस विशेष उद्देश्य से हम महाराज दशरथ से तुम दोनों को मांग कर लाए थे वो पूरा हो गया है। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव, आपके बिना इस आयोजन का कोई अर्थ नहीं है। विवाह का पहला आशीष तो आप ही को देना था,
आपके बिना हमें कदम कदम पर निर्देश कौन देगा गुरुदेव?
अरे ये क्या, तुम दोनों की आंखों में आंसू? तुम जैसे वीरों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता राम।
इन आंसुओं का कारण भी आप ही हैं गुरुदेव, और आप ही कह रहे हैं कि ये आंसू हमें शोभा नहीं देते।
मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता राम।
तो वचन दीजिए, वचन दीजिए कि आप पिताजी से मिले बिना नहीं जाएंगे।
तुमसे कौन जीत सकता है?
तो आप नहीं जाएंगे ना गुरुदेव?
नहीं, हम इस विवाह के बाद ही जाएंगे।
कैसा अद्भुत प्रेम था दोनों भाइयों के मन में गुरुदेव के लिए, होता भी क्यों ना। वो जानते थे कि गुरु ने ही उन्हें संपूर्ण बनाया है, अपराजय बनाया है। इसलिए गुरु के उन्हें छोड़कर लौटने की कल्पना से ही दोनों भाइयों के मन बुझ गए, और जब उनके बहुत निवेदन पर गुरु रुकने को तैयार हुए तब उनका मन शांत हुआ।
गुरु चरण ही राह दिखाए, गुरु दिए ही ज्ञान सब, गुरु रुकन को हान करे, गुरु रुकन को हान करे, पड़ा प्रभु को चैन तब।
अयोध्या से चलकर जनकपुरी पहुंची बारात के स्वागत में पूरी मिथिला नगरी उमड़ पड़ी थी। गलियों में हर ओर रंग और गुलाल की वर्षा होने लगी थी। नगर द्वार से मिथिलापति के महल तक फूल बिछाए गए और आकाश अबीर गुलाल से रंगा हुआ था। जनकपुरी की सुंदर सजीली कन्याएं और स्त्रियां झरोखों से बारात को देखने के लिए उमड़ पड़ी। राम और लक्ष्मण भी विवाह उत्सव की मनोहारी छवि देखकर मुग्ध हो गए। कैसा अनोखा अवसर था। राम लक्ष्मण जनकपुरी की सुंदरता को निहारते नहीं थकते थे, और जनकपुरी के निवासी राम और लक्ष्मण को।
देखिए भैया, अयोध्या और मिथिला के संगम की शोभा कितनी मनोहारी है, कितना सुंदर है ये दृश्य। लगता है बस यूं ही देखता रहूं।
हाँ लक्ष्मण, मैं तो गुरुदेव के मन की बात सोच रहा हूँ। लगता है उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, जैसे वो इस संगम की कल्पना पहले से ही कर चुके थे।
परंतु गुरुदेव ने हमसे ये सब छिपाया क्यों? वो हमें ये सच तो बता ही सकते थे ना?
हो सकता है, यदि वो सब कुछ बता देते तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं होता।
हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने देवी अहिल्या का सच हमें वहाँ पहुँचने पर ही बताया, बिल्कुल सही समय आने पर। भैया लगता है विवाह की विधियाँ शुरू होने जा रही है, आइए हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए।
अवश्य लक्ष्मण।
गुरुदेव आप यहाँ?
पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
नगर की शोभा देख रहे थे गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, क्या हम चारों भाइयों का विवाह?
हाँ, तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ और एक ही मंडप में संपन्न होने जा रहा है। वो देखो, चारों कन्याएं सखियों के साथ मंडप की ओर आ रही है। कुलगुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठ चुके हैं। देखो मंगल गीत भी आरंभ हो चुका है।
आए हैं अवध कुमार, सखी सब मंगल गाओ। आए हैं अवध कुमार,
मिलकर मौत मनाओ। राजा जनक मिथिला की पुण्य भूमि पर आप सभी अयोध्या वासियों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा में थे, आज वो शुभ घड़ी आ गई। हमारी पुत्री सीता के विवाह के साथ ही दो राज परिवारों का मिलन हो रहा है। हम गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के सदा ऋणी रहेंगे, जिनकी कृपा से ये यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है।
हम कौशल राज दशरथ मिथिलापति के इस आयोजन से अति प्रसन्न हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे पुत्रों का विवाह इस प्रकार संपन्न होगा। आज हमें पूरा विश्वास हो गया है कि संसार में जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है।
नारायण नारायण, देख रहे हैं परमपिता, महाराज जनक और महाराज दशरथ इस विवाह से कितने प्रसन्न हैं।
ये अद्भुत संयोग है नारद, राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना राम। ये शुभ आयोजन तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। महादेव का धनुष तो निमित्त मात्र था।
महादेव की भूमिका तो इस विवाह में होनी ही थी परमपिता, क्योंकि राम तो प्रजापालक श्री हरि के अवतार हैं।
जानकी भी तो शक्ति रूपा है, जैसे श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी है, उसी तरह राम के साथ सीता है।
तो क्या श्री राम के अन्य भाइयों के साथ सीता की बहनों का विवाह भी?
ये भी पहले से ही निश्चित था।
नारायण नारायण, ये तो अद्भुत संयोग है। आज्ञा दे परमपिता, अब मुझसे और लोभ नहीं रुकता, मैं तो चला इस मनोहारी दृश्य को देखने। नारायण नारायण।
राम जानकी का विवाह ये क्षण ही ऐसा था कि उसे देखने का मोह कोई नहीं छोड़ सकता था। सभी देवी देवता नव वर वधु को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। आहा, कैसा अद्भुत क्षण था वो।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि।
हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ, और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है।
अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें।
अवश्य आचार्य, वर तो यहाँ आ गए हैं, राम और लक्ष्मण तो हमारे पास हैं, भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं।
हम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपने चारों पुत्रों के विवाह के विधि विधान संपन्न करने का निवेदन करते हैं।
कन्या पक्ष के आचार्य यहाँ उपस्थित है राजा, हम सदैव उनके साथ हैं।
श्रीमत पंकज विस्तारो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलह चंद्रो भास्कर बिठपल वरुण प्रेताधिपादिग्रह।
मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए।
मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ।
इस प्रकार अयोध्या कुमारों का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ और अब नववधू की विदाई की बेला पहुंची। ये वो घड़ी है जिसमें आंसू रोके नहीं रुकते। बस इस विदाई की बेला का आना था कि जानकी की माता सुनैना की आंखों में गंगा यमुना उमड़ पड़ी। ऐसी अनोखी घड़ी थी वो। माता सुनैना के आंसू देखकर माता पार्वती भी स्वयं को रोक नहीं सकी।
आप क्यों रो रही हैं देवी पार्वती? आपको क्या हुआ?
क्या करूं स्वामी, सुनैना के आंसू देखे नहीं जाते। लगता है जैसे टोलियों में उनकी बेटियां नहीं, उनके प्राण जा रहे हो।
माता और पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है देवी। देवी सुनैना ने बरसों जिनका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिन पर पल पल अपनी ममता न्योछावर की, वही सीता उनसे दूर जा रही है। ऐसे में कौन ऐसी माँ होगी जिसकी आंखें न छलक पड़े?
बेटियाँ क्यों पराई होती हैं स्वामी? बेटी के जन्म के साथ ही ये क्यों तय हो जाता है कि उन्हें किसी और घर में जाना होगा? क्यों स्वामी क्यों?
सब जानते हैं कि ये जगत की रीति है, पर सही कहें तो ये आंसू मुझसे भी कहाँ देखे जाते। आप ही जाकर सुनैना को समझाइए, उनके आंसुओं को बहने से रोकिए।
कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बेटियों की विदाई तो सदा आंसुओं से भरी होती है, और जब बेटी सीता हो तब तो पत्थर भी नम हो जाए। तभी तो अवगढ़ देव शिव भी भावनाओं में बह गए, और तभी देवी पार्वती स्वयं चल पड़ी सुनैना को माँ बेटी के संबंधों का सच बताने, उनके आंसुओं की गंगा जमुना को थामने। जबकि वो स्वयं जानती थी कि बेटी की विदाई को देखकर किसी माँ के बहने वाले आंसू भावनाओं की वो बाढ़ हैं जो किसी भी मान से नहीं रुकती।
कैसी विधाता रीति बनाई, खुद की जाए हुई पराई। बरसों सीनी डाल जो, बरसों सीनी डाल जो, आज काट कर दीन ही विदाई।
रामायण
मैं काल हूं, मैंने देखी है जानकी की विदाई की वो घड़ियां। राजा दशरथ अपनी वधुओं को विदा करने के लिए मिथिलापति जनक से निवेदन कर रहे थे, किंतु राजा जनक के आंसुओं में महाराज दशरथ का निवेदन बार बार डूबा जा रहा था। दूसरी ओर महारानी सुनैना सीता को विदा करने की कल्पना करके ही विकल हो रही थी, आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। उनके आंसुओं को देखकर देवी पार्वती भी अपने को रोक नहीं सकी और योगिनी के रूप में सुनैना के पास आई।
जो एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुई, उस बेटी के बिना मैं कैसे जी सकूंगी, जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बिना कैसे काटूंगी एक एक पल? पूरे राजमहल को जीवन देने वाली सीता को मैं कैसे विदा कर दूं? आप ही बताएं, सीता के बिना ये पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा?
देवी, मैंने वर्षों हिमालय में साधना की है, मैंने जीवन का सच जाना है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास करो। आपने अब तक जो भी किया है सीता की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। कितने बड़े अरमान थे आपके कि सीता किसी अच्छे कुल में ब्याही जाए, उसका एक सुंदर सुखी परिवार हो, और जब आज वो शुभ घड़ी आ गई है तो फिर ये मोह कैसा?
मैं जानती हूँ देवी, पर मैं कोई योगिनी नहीं, एक माँ हूँ, और मैं इस माँ के मन को कैसे समझाऊं? ये माँ का मन कुछ समझने को तैयार नहीं है देवी।
सीता को विदा करके जब आप उसे राम के साथ प्रसन्न देखेंगी तो आपका ये दुख सुख में बदल जाएगा, और फिर ममता का सच तो यही है ना सुनैना? हाँ, यही एक बेटी और एक माँ का सच है। अब तो चुप हो जाओ सुनैना, देखो सीता को, आपको देखकर उसकी क्या दशा हुई है।
माँ कहाँ है माँ, कहाँ है माँ? आप चुप क्यों है माँ? माँ आपको छोड़कर कैसे जाऊं?
बेटी संसार की यही रीति है, बेटियों के लिए तो ससुराल ही अंतिम सच है।
अब किसके पास दौड़ दौड़ कर आऊंगी माँ, किसके आंचल में सर रखूंगी, किससे करूंगी अपने मन की बातें? पिताजी भी नहीं दिखेंगे जो भागती हुई उनके पास पहुंच जाऊं।
राम, लक्ष्मण
आया गुरुदेव।
मैं ये क्या देख रहा हूं राम? लक्ष्मण तुम भी?
कुछ नहीं गुरुदेव, पूरा राजमहल आंसुओं में डूबा है, ये देखकर हमारे भी आंखें भर आई।
पूरी जनकपुरी रो रही है गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में हम कैसे रोके अपने आंसुओं को।
ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण, क्या जीवन का सच नहीं जानते तुम लोग? क्या सांसारिक सच का ज्ञान नहीं है तुम्हें? क्या भूल गए कि मिलना और बिछड़ना ही इस जगत की रीति है? और राम तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुमसे भला क्या छिपा है?
क्षमा करें गुरुदेव, जीवन का यह पहला अवसर है जब हम यथार्थ भूल गए हैं। ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह गया है, सब जानते हुए भी हम अज्ञानी बन गए हैं।
नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कभी नहीं कह सकते। तुम्हें माया मोह से ऊपर उठकर सोचना होगा।
वो कैसा अद्भुत क्षण था जब प्रभु राम के नयन की झलक पर वो जितना स्वयं को वश में करने की कोशिश करते उतने ही भावनाएं बहकती ही जाती, आंसू छलकने लगे थे। मैं जो संसार की सारी घटनाओं में तटस्थ हूँ, हर शुभ अशुभ से परे हूँ, दुख दर्द और माया मोह से अलग हूँ, स्वयं मैं भी भावना से भर गया। यही नहीं, उनकी ये दशा देखकर देवऋषि नारद भी आश्चर्य से भर गए कि स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम भी ऐसे भावुक हो गए।
नारायण नारायण, ये कैसी लीला है देवाधिदेव, श्री हरि के अवतार श्री राम को भी माया से मुक्त होने में कष्ट हो रहा है।
ये तो स्वाभाविक है देवर्षि, इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है?
इसलिए महादेव कि राम तो सब कुछ जानते हैं, वो तो स्वयं भगवान हैं, जो वो चाहते हैं वो ही होता है, तो भला कौन सा ऐसा सच है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है?
कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है देवर्षि।
नारायण नारायण, ये रहस्य तो आप ही समझ सकते हैं प्रभु।
इसमें कोई रहस्य नहीं है देवर्षि, राम ने मानव रूप में अवतार लिया है और उन्हें वो सारी लीलाएं करनी हैं जो भूलोक में होनी चाहिए।
इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम का विवाह भी एक लीला ही है प्रभु।
श्री राम को भूलोक में जो लीला करनी है उसके लिए ये विवाह एक माध्यम है देवर्षि।
तो क्या देवी सीता?
सीता के माध्यम से ही श्री राम अपने श्री हरि रूप को साकार कर सकेंगे देवर्षि।
नारायण नारायण, आप धन्य है प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मिथिला में श्री राम की अद्भुत लीला का आनंद लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण।
अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए महाराज जनक।
कैसे आज्ञा दे दूं महाराज दशरथ, कैसे दे दूं आज्ञा? देखिए महल के कोने कोने से हर ओर सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं, भावनाएं वश में नहीं है, जैसे जैसे कलेजा बाहर निकल आएगा। ऐसे में आप ही कहिए मैं कैसे आज्ञा दे दूं आपको।
आप मुझे पराया ना समझे महाराज जनक, आपकी पुत्रियां कहने को हमारी वधुएं हैं, पर उन्हें हम पुत्रियों का प्यार देंगे, इन्हें अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा।
जानता हूं महाराज जानता हूं, पर मैं उनके कष्ट की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, सच तो ये है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। सीता तो हमारे जीवन का आधार रही है, हमारा हृदय भी उसे देखकर ही धड़कता है। आज उसे जाता देखकर लग रहा है जैसे हमारी सांसें छिन रही हों हमसे।
मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब भी चाहें इनसे मिलें, इन्हें भी खुशी होगी और मुझे भी। देखिए पालकियां तैयार हैं, अब आप विलंब ना करें।
मैं बारात बढ़ाने का आदेश दे रहा हूँ महाराज, शुभ घड़ी निकली जा रही है।
मंत्रीवर सुमंत, बारात को चलने के लिए कहिए।
और फिर आंसुओं की गंगा को पीछे छोड़ते हुए बारात चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे भावनाओं के सागर पर कोई विशाल समुद्री बेड़ा चला जा रहा है।
गाजे बाजे बज उठे चली बारात प्रभु राम की, नैना गंगा हो गए यूं नीर बहाए जान की।
देवी पार्वती, अब आप क्या सोच रही हैं? अब तो बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए निकल चुकी है।
मैं उस घड़ी को भूल ही नहीं पा रही हूँ स्वामी। जानकी को विदा होते देखकर सारी मिथिला कैसे रो रही थी, जैसे उनकी स्वयं की बेटी विदा हो रही हो।
सुख और दुख मानव जीवन के सामान्य चक्र हैं देवी, और फिर विदाई का दुख तो क्षणिक है, राम और सीता का मिलन तो जन्मों जन्मों का है। अब आप अयोध्या में देखें कैसी प्रसन्नता है हर ओर, कैसा अद्भुत स्वागत हो रहा है बारात का। सारा अयोध्या जैसे रस्ते पे उतर आया है, आरतियों की थालियां लिए नर नारी वधुओं के स्वागत करने के लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े हैं। देखिए राज माताएं आरती की थाल लिए कितनी प्रसन्न दिख रही हैं।
अरे कैकेयी, सुमित्रा कहाँ रह गई? शीघ्र आओ, उधर देखो पालकियां पहुंचने को हैं।
अभी आई दीदी फूल लेकर।
कैकेयी कहाँ है? उन्हें भी साथ ले आओ ना, ये दृश्य फिर जीवन भर देखने को नहीं मिलेगा।
मैं यहाँ हूँ दीदी, झरोखे पर पालकी की राह देख रही हूँ। देखिए ना, महल के बाहर पूरी अयोध्या कैसी नाच कर रही है।
लो पालकियां भी आ गई, कितनी देर करोगी, जल्दी नीचे आओ।
अपने बेटों की बारातें आती देखकर माओं का मन मोर जैसा मगन नाच उठा। कैसा अद्भुत क्षण था। अयोध्या के आकाश पर बादल घूमड़ आए थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, पक्षी चहचहाने लगे थे, लोग मगन होकर नाच गा रहे थे जैसे सारी सृष्टि उत्सव मना रही हो, सीता राम के विवाह का उत्सव।
राम विदा कर लाए सिया, मगन दिशाए आठ, झांझ मंजीरा बाज रहा, झांझ मंजीरा बाज रहा, मन मोर भयो मुस्कात।
रामायण।
मैं काल महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ सहित सभी बाराती अयोध्या पहुंच गए थे। अपने चारों पुत्रों को अपनी दुल्हनों के साथ देखकर कौशल्या, सुमित्रा और केकई की खुशी संभाले नहीं समझती। सभी माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और रघुकुल की रीति के अनुसार राजमहल में वधू प्रवेश हुआ। अपने राजकुमारों की जोड़ियां देखकर सारी अयोध्या को जैसे खुशियों के पंख लग गए हों। महाराज दशरथ तो बच्चों जैसे चहक रहे थे। उन्होंने खुशी में भरकर महामंत्री सुमंत को बुलवाया।
मंत्री सुमंत, आज की प्रसन्नता मुझे उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन मेरे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था।
मैं उस दिन को भला कैसे भूल सकता हूँ महाराज। वर्षों के बाद अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हुआ था और आज भी वैसा ही दिन है। पूरी अयोध्या उल्लास से भर गई है, लोगों की खुशियाँ थामे नहीं थमती।
प्रजा के लिए राजकोष खोल दिया जाए, पूरे 7 दिन तक अयोध्या में उत्सव मनाया जाए।
अवश्य महाराज, प्रजा तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है, वो इस उत्सव को अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बना देना चाहती है। आपकी आज्ञा का पालन होगा।
बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे, बाजो रे बाजो रे बाजो रे।
राम सियासन अयोध्याए, राम सियावर राम कहाए, राम सियासन
नारायण नारायण। देख रहे हैं महादेव, आज अयोध्या में लोग कैसे प्रसन्न हैं।
हाँ देवर्षि नारद, ये दृश्य केवल मैं ही नहीं पूरा देवलोक देख रहा है। महाराज दशरथ की इस प्रसन्नता में सभी भागीदार होना चाहते हैं।
मन कहता है कि अवधपुरी में ये उत्सव सदा सदा चलता रहे।
मैं भी परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि अयोध्यावासी सदा सदा इसी तरह प्रसन्न रहे, मंगल गीत गाते रहे, उल्लास मनाते रहे। नारायण नारायण।
अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि साक्षात स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। और आज ही क्यों, जिस क्षण राम लाला ने अयोध्या में चरण धरे थे, उसी क्षण से अयोध्या सुख शांति और धन धान्य से भर गया। इधर राजमहल में राजा दशरथ सहित तीनों रानियां अपनी बहुओं को देखकर सदा आनंदित रहती। सीता सहित अन्य तीनों बहुएं महाराज दशरथ सहित माताओं की सेवा में लगी रहती। जब समय मिलता वे अपने पतियों के मन को भी दे जाती।
आइए माँ, दिन भर के कामों से आप थक गई होंगी, आपके पांव दबा दो।
नहीं सीता, भला तुम जैसी बहुओं के होते हुए मुझे कैसे थकान। तुम अपने कक्ष में जाओ, राम तुम्हारी राह देख रहे होंगे।
आपके होने से ही तो हमें राम मिले हैं माँ, इसलिए सबसे पहले आपकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमसे अपनी सेवा का ये अधिकार ना छीनिए।
तुमसे कोई नहीं जीत सकता सीते, आपकी सेवा करने के लिए हमें चाहे जीत मिले या हार, हमें दोनों स्वीकार है।
कितने सुंदर संस्कार पाए हैं तुमने। मेरे पास आओ बहू, मन कहता है कि कितनी बलाएं ले लू तुम्हारी। हे ईश्वर, मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, किसी की भी।
अपनी पुत्रियों को कैसे सुंदर संस्कार दिए थे महाराज जनक और महारानी सुनैना ने। बहुओं के इन संस्कारों को देखकर माताएं फूली नहीं समा रही, वो घड़ी घड़ी उनकी बलाएं लेती रहती थी। अयोध्या में सब कुछ सुख से बीत रहा था, तभी एक दिन एक सैनिक ने भरत के मामा के आने का समाचार महाराज दशरथ को सुनाया।
महाराज की जय हो।
बोलो सैनिक, क्या समाचार लाए हो?
महाराज, कैकेय नगर के राजकुमार युधाजीत पधारे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं।
क्या, कैकेय राजकुमार युधाजीत आए हैं? जाओ और उन्हें सम्मान के साथ ले आओ।
जो आज्ञा महाराज।
इस खुशी के अवसर पर कैकेय के राजकुमार का अयोध्या आगमन। क्या कारण था उनके आने का? क्या उनका आना विधि का कोई ऐसा विधान था जो काल की गति बदल सकता था?
अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को युधाजीत का प्रणाम स्वीकार हो।
आइए आइए राजकुमार युधाजीत, कैकेय राज में सब कुशल तो है ना?
हाँ महाराज, वहाँ सब प्रसन्न है, किंतु हमारी माँ कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। यदि कैकेय पुत्र भरत कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। भरत को देखते ही उनके मुख पर मुस्कान आ जाती है।
अवश्य अवश्य क्या कहे कुमार, वे अवश्य जाएंगे। मंत्री व सुमंत, राजकुमार भरत को ननिहाल भेजने की तैयारियां की जाए।
जैसी आज्ञा महाराज। महारानी कैकेयी को महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो।
आइए मंत्रीवर, क्या समाचार लाए हैं?
प्रसन्न हो जाइए महारानी, मैं समाचार ही नहीं साक्षात आपके भाई कैकेय कुमार युद्ध जीत को लेकर आया हूँ।
भैया, क्या क्या भैया आए हैं? भैया।
हाँ कैकेयी, कैसी हो बहन? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए।
मैं ठीक हूँ भैया, ननिहाल में सब प्रसन्न तो है ना?
सब प्रसन्न है, और वहाँ की प्रसन्नता को ही बढ़ाने के लिए माँ ने राजकुमार भरत को बुलवाया है। किंतु भरत है कहाँ? अभी तक कहीं दिखे नहीं।
अभी बुलवाती हूँ। भरत और शत्रुघ्न का सारा समय तो राम और लक्ष्मण के साथ ही बीतता है। चारों भाई एक दूसरे को कभी छोड़ते ही नहीं। भाइयों में इतना प्रेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं।
तुम सौभाग्यवती हो बहन, भगवान करे कि उनका ये प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे।
प्रणाम माँ, आपने मुझे बुलवाया।
हाँ पुत्र, देखो तुम्हारे मामा युद्धाजीत तुम्हें लेने के लिए आए हैं।
प्रणाम मामा जी, आप कैसे हैं? और नाना नानी?
सब कुशल हैं भरत, और हर पल तुम्हें याद करते हैं। अब उनके पास चलने की तैयारी करो।
हाँ, पर क्या मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा माँ?
हाँ पुत्र।
नहीं माँ, तो मैं कहके ये नहीं जाऊँगा।
पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो?
मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, अब हम चारों भाई जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे।
भरत, अब तुम सब भाई बड़े हो गए हो, और फिर राम तो अयोध्या छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते।
क्यों माँ, वो कहीं क्यों नहीं जा सकते?
क्योंकि राम को महाराज से राजकाज के बारे में बहुत कुछ सीखना है, और वो अयोध्या में ही संभव है। इसीलिए भैया राम का मुँह त्याग कर शीघ्र कैकेयी के लिए प्रस्थान करो। चलो।
ये क्या कह रहे हो भरत, तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे समय में भी तुम उनके पास नहीं गए तो कितना दुख होगा उन्हें।
और आपको छोड़कर जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा? आप जानते हैं ना कि आपके साथ ही मेरा सुख है।
अपने सुख के लिए उनके कष्ट को मत भूलो भरत, जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो मुझे जाना ही होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से भय सा लग रहा है। लग रहा है जैसे मैं किसी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ।
चिंता मत करो भरत, मैं चोरी चोरी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब जाओ, देखो बाहर रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
जाने क्यों भरत के मन में अनजाना सा डर समा गया था, पर उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना ही पड़ा। किसको पता था कि जिस अयोध्या में लगता था कि खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी, वहीं एक अनहोनी द्वार के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तो बस राह देख रही थी कि इधर भरत अयोध्या से बाहर पांव धरे और वो भीतर आकर अयोध्या को अपने पंजों में जकड़ ले और राजमहल को युगों युगों तक ना मिटने वाली गहरी पीड़ा में डुबा दे।
जब सुख मन मगन हो मना रहा हो मोद, तब दुख बैठे घात में, तब दुख बैठे घात में, देने गहरा शोक।